आगे अब एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जो बड़ा फोकस था। इनकी भी पूरी कहानी पढ़ के फिर हम इसमें से अपने लिए अमल की बात लेंगे। वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम, इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो, बेशक वो बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे। जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, जो ना सुने ना देखें आपको कुछ भी फायदा ना पहुंचा सके। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं, तो आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी राहबरी करूंगा। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्तिश से बाज आ जाए, शैतान तो रहमो करम वाले अल्लाह ताला का बड़ा ही फरमान है। अब्बा जान, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े, कि आप शैतान के साथी बन जाएं। इसने जवाब दिया, इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों से रूगरदानी कर रहा है? सुन, अगर तू अब्बास ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा, जा एक मुद्दते दराज तक मुझसे अलग रह। खाल सलामुन अलैक, कहा, अच्छा तुम पर सलाम हो, मैं तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा, वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इन्हें भी सबको छोड़ जा रहा हूँ, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा, कि मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांग कर कभी भी महरूम न रहूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सब को और अल्लाह के सिवा इनके सब माबूदों को छोड़ चुके, तो हमने इन्हें इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया, और इन सब को हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई, हमने इनके जिक्रे जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। ये थी आयत नंबर 41 से 50, 41 से 50। इसका उन्वान लिखेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नसीहत करते हैं। इस वाक्य से हमने बहुत कुछ सीखा। पहली चीज़ है कि बाज़ दफ़ा बच्चों को वो बात समझ आ जाती है जो माँ बाप को नहीं आती, और आज के दौर में यही हो रहा है। दूसरी बात यह कि जो बात बच्चों को समझ आ जाए तो फिर उसको बड़ों को अच्छे तरीके से बयान कर देनी चाहिए। अगली चीज़ हमने हज़रत इब्राहिम के किरदार और उनके बाप के किरदार में बड़ी वाज़े तौर पे देखी कि इब्राहिम या बती प्यार से अब्बा जी कर रहे हैं, और बाप कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। हकीकत क्या है कि जब बंदा अल्लाह से दूर होता है ना, तो वो इंसानों से भी दूर हो जाता है, किसी से भी वो बात सुनना नहीं चाहता। खास तौर पे जब वो बात उससे उम्र का कोई छोटा शख्स करे तो उसको वो बात और बुरी लगती है। अगली चीज इससे हमने सीखी कि अगर हमें कोई बात समझ आ जाए तो हमें उस बात को अपने खानदान के लोगों तक पहुंचाने की नियत कर लेनी चाहिए, जैसा मौका हो, जैसे हालात हो, लेकिन खूबसूरत तरीके से बात करनी होगी। फिर दूसरी बात है कि अपने से बड़े को जब हम नसीहत करें तो फिर हमारा अंदाज जो है बड़ा ही अदब और एहतराम का होना चाहिए, और सख्ती वाला अंदाज नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात यह कि जब कोई ना माने तो फिर उनको छोड़ दो। आपने शायद इस आयत को हाईलाइट करना हो तो कर लीजिए, आयत नंबर 49 है कि जब वो अलग हो गए उन लोगों से और उनके बुतों से, तो अल्लाह ने उनको बेटे इसहाक और याकूब दिए। ये है वो नुक्ता जो बहुत सारे लोगों की आंखों से उछल है, कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में कुछ छोड़ता है तो अल्लाह दुनिया में भी उसकी नेमतें देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी औलाद नरीना से महरूम थे, 70-80 साल तक भी औलाद नहीं हुई, और जब बिल्कुल आखिरी उम्र के दिन शुरू हुए तो अल्लाह ताला ने फिर इनको इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। यहाँ बेटे के बाद पोते का तذکرہ कर दिया। तो बात क्या है कि जो बंदा अल्लाह के लिए जितना देगा अल्लाह उसका रखता नहीं। देखिए, आपको कोई कुछ दे तो आप उसका हक रख लेते हैं? आपके लिए कोई बहुत संजीदा हो, आपका ख्याल रखे, आपसे मोहब्बत करे, तो क्या आपका दिल चाहता है कि आप उसका भी हक दें? देना चाहते हैं ना? हम तो हर वक्त इस ख्वाहिश में होते हैं कि जल्दी से इसका हक अदा करें। तो इसी तरह जब हम अल्लाह को कुछ देते हैं ना, तो अल्लाह भी नहीं रखता। इस यकीन के साथ अगर आप अल्लाह को अपना वक्त भी देंगे, अपनी जान देंगे, अपना माल देंगे, अपनी स्किल्स देंगे, अल्लाह ताला आपकी इन तमाम नेमतों को बढ़ा देगा। वस्कुर फिल किताबी मूसा, इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करो जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने इसे तूर की दाई जानिब से निदा की और राजगोई करते हुए इसे करीब कर लिया, और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान करो, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और जक़ात का हुक्म दिया करता था, और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो, वो भी नेक किरदार पैगंबर था, हमने इसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। यही वो अम्बिया हैं जिन पर अल्लाह ताला ने फजलो करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा लिया, और औलाद इब्राहिम और याकूब से और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी, ये सजदा करते और रोते रोते गिड़गड़ाते थे। ये थी आयत नंबर 51 से 58, 51 to 58। इनका उन्वान लिखिए, चुने हुए लोग। इन आयतों में हमने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाते से एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, और वो कह के वो अपने घर वालों को नमाज और जकात का हुक्म देते थे। ये एक बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे। बस तब हम ये सोचते हैं कि हमें इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये खुद ही पढ़ लेंगे, ये खुद ही नेक हो जाएंगे। और आज के दौर का जो एक लेटेस्ट कल्चर है, वो कह के बच्चों को रोक टोक ना करो, बच्चों को मना ना करो। तो याद रखिए कि माँ बाप नमाज पढ़ते हैं या दीन की तरफ हैं, तो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको देख के, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। इंसान की फितरत क्या है कि वो बुराई तो फौरन दूसरे को देख के करने लगता है, लेकिन नेकी तब तक नहीं करता जब तक उसको करना चाहिए। तो जब नबियों को अपने बच्चों को तरबियत करने के लिए या तबलीग के लिए हुक्म था, तो आप सोचिए कि आज के दौर में फिर इसकी कितनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो लिहाजा माँ होने के नाते और बाप होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, वरना एक वक्त आता है कि जब दरख्त मजबूत हो जाते हैं तो वो मुड़ते नहीं है। इसी तरह जब हम बहुत बचपन में बच्चों को तबलीग नहीं करते, उनको अच्छे और बुरे का फर्क नहीं बताते, खास तौर पे यहाँ नमाज की बात है, तो जब बचपन की जो नमाज होती है, यकीन करें वो हड्डियों में पड़ जाती है। मैंने देखा है कि बाद में भी लोग नमाजी होते हैं, डर के, पढ़ के, समझ के, किसी मुश्किल मरहले से गुजरने के बाद, फिर भी वो पुख्तगी नहीं आती जो बचपन की नमाज की आदत होती है। जिनको बचपन से आदत पड़ती है, उनके तो दिल ऐसे लगता है जैसे कंपस की तरह घूमने लगते हैं। नमाज का वक्त आ जाए तो वो बेचैन होने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 साल का होने पे अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, और 10 साल होने पे ना पढ़े तो फिर सख्ती करो। ये जो दिन होते हैं ना, शुरू से ही आप देखें घरों में नमाज का माहौल है, तो बच्चे भी पढ़ते हैं। माँ नमाज पढ़ती है तो बच्चियां भी दुपट्टे उठा के बैठती हैं, बाप मस्जिद में जाते हैं तो बेटा भी टोपी उठा के भागता है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये असल में एक नई नस्ल को एक नया रास्ता देने की होती हैं। अगर इसमें कहीं भी कमी कोताही हो गई, अपने उन बच्चों को साथ लेके बैठे, माफी मांगे, अच्छे तरीके से बात करें और घर में मिल के नमाज का इख्तमाम करें। घर में जब एक वक्त में सारे पढ़ लेते हैं ना, तो वो मसले ही खत्म हो जाते हैं। तुमने पढ़ी है, तुमने पढ़ी है। बाज़ माए कहती, इतनी दफा पूछना पड़ता है, इतनी दफा कहना पड़ता है, जरूरत ही नहीं है कहने की। वक्त हुआ, चलो भाई सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं, चलो चलो आओ बेटा तुम जमात कराओ, वो करवा रहे आप साथ पढ़ रहे हैं, बेटियां तो आप साथ लेके खड़े हो जाए। इंशाल्लाह जब सारे एक साथ पढ़ लेंगे, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, खाने का वक्त है, एंटरटेनमेंट का वक्त है, जाने का वक्त है, नमाज का वक्त आ गया, तो फिर इस वक्त आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबियों ने अपने दौर में ऐसी दावत दी, इसके वजह से अल्लाह ने उनके औलादों को चुना। लेकिन जिस तरह लोग चिराग से दूर जाते हैं ना, तो अंधेरे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह फिर बाद में अंबिया कराम की नस्लों के बाद की नस्लों के साथ क्या हुआ, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सला, फिर इनके बाद ऐसे ना खल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज जाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो इनका नुकसान इनके आगे आएगा। इस आयत को हाईलाइट कीजिए, तदब्बुर की आयत है। नमाजें ज़ाया हुईं क्यों, वत्तबउ शहवात, बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप नोट कर लीजिए, हर नमाज के फौत होने के पीछे कोई ख्वाहिश होती है, या सो रहे होते हैं सोने की ख्वाहिश, या खा रहे होते हैं खाने की ख्वाहिश, या बाजार में है या दुनिया के झंझट में है। नतीजा क्या हुआ कि ख्वाहिशों को नमाजों से रुकने का जरिया बना लिया। तो ख्वाहिशों पे पाबंदी इंशाल्लाह नमाजों को बेहतर करेगी। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा, बजुज उनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और इनकी जरा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। कौन सी जन्नत, जन्नाति अदनिल्लती वअदा रहमानु इबादहू बिलगैब, हमेशगी वाली जन्नतों में जिसका गायबाना वादा अल्लाह मेहरबान ने अपने बंदों से किया है, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहाँ कोई लख बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। इनके लिए वहाँ सुबह शाम इनका रिस्क होगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरी सुमिन इबादिना मन काना तकिया, ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाते हैं जो मुत्तकी हों। दिल चाह रहे उस जन्नत में जाने को? जी, उससे पहले कुछ काम करने पड़ेंगे ना। जी, आयत नंबर 59 से 63, इसका उन्वान लिखेंगे, जन्नते अदन जिसका वादा तकवा वालों से किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत अदन वो जन्नत है जिसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। सोचिए ज़रा, टू टोन चूड़ियाँ देखी होंगी किसी की, नज़र होगी किसी पे, हैं यानी गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन, पूरी जन्नत उसकी है। जहाँ घर सोने चांदी के होंगे तो ज़रा सोचिए ख़वातीन ने पहना क्या होगा। जब भी हम जन्नत की बातें सुनते हैं तो एकदम बस तलब आती है कि हाय मिल जाए। अल्लाह ताला कह रहे ला यस्मऊना फीहा लगवन, बेकार बातें नहीं सुनेंगे, पर क्यों? इसलिए कि दुनिया में ही लगवियात से परहेज करेंगे। लगवियात क्या है? वल्गर टॉक्स, वल्गर चीज़ों से दूर रहेंगे ना तो जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। वमा नतनस्सलु इल्ला बि अम्री रब्बिक, हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते, हमारे आगे पीछे और इनके दरमियान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है, तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का, जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, सबका रब वही है, तू इसी की बंदगी कर और इसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसका हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा। अवला यस्कुरुल इंसान, क्या इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उसे उससे पहले पैदा किया हालांकि वो कुछ भी न था। फवरबिका, तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतानों को जमा करके जरूर जरूर जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर करेंगे। हम फिर हर गिरोह में से इन्हें अलग निकाल कर खड़ा कर देंगे जो रहमान से बड़े अकड़े अकड़े फिरते थे। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम के दाखिले के ज्यादा लायक हैं। वइम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, तुम में से हर एक वहां से जरूर वारिद होने वाला है, ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फैसला शुदा अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। ये कौन लोग थे? वैजा तुतला अलैहिम आयातुना बैजिनात, जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती थी तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं जो साजो सामान और नामो नमूद में इनसे बढ़ चढ़ कर थी। ये है आयत नंबर 64 से 74, 64 से 74। इसका उनवान लिखिए पुल सरात से सबको गुजरना है। अल्लाह ताला ने यहाँ खबर दे दी कि वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, 71 आयत है। अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने का एक ही रास्ता रखा है और वो जहन्नुम के ऊपर से गुजर के है। अगर आप इस तरफ देखें ये मैदाने महशर है, इसके साथ जहन्नुम है और इसके बाद जन्नत है। मोस्टली हमारे जहन में आता है कि ये मैदाने महशर है तो इसके राइट साइड पे जन्नत का रास्ता होगा, चलो भाई जन्नतियों तुम इधर चले जाओ और जहन्नमियों को कहा जाएगा तुम इधर से चले जाओ। ये सही इमेजिनेशन नहीं है। अहादीस को पढ़ने से जो तसव्वुर आता है कि मैदाने महशर के बाद फौरन उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ है वो जहन्नुम है और उसके बाद जन्नत है। जिसको जहन्नुम में जाना उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नतियों को भी जहन्नुम के ऊपर से गुजारना है और वहां से गुजरने के लिए एक ब्रिज रखा हुआ है जिसको पुल सरात कहते हैं। वाइम मिन कुमिल्ला वारी दुहा, हर एक गुजरेगा और वो कैसे गुजरेगा? अपने अमाल के नाते से गुजरेगा। आप असनुल बयान में ये हदीस भी इंशाल्लाह खुद भी पढ़ेंगे, सही बुखारी में है कि लोग अपने अमाल के मुताबिक जाएंगे। कोई बिजली की तेजी से, कोई हवाओं की तरह, कोई परिंदों की तरह, कोई उमदा घोड़ों की तरह। अब एक सवाल लोगों के जहन में आ सकता है, ये कैसे हो सकता है? चले भाई आग के ऊपर से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लपट लगेगी। तो मैं आपको छोटी सी इसकी मिसाल दूंगी कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे सामने गुजर रहे तारों में कहाँ से गुजरता है? धात में से गुजर जाता है ना, मेटल्स के अंदर गुजरता है। आप ऊपर प्लास्टिक का तार लगाते हैं उस पे से नहीं गुजरती ना इलेक्ट्रिसिटी, या लकड़ी में से नहीं गुजरती। किसने इसको हुक्म दिया? उस जात ने कहा कि तुमने मेटल से गुजर जाना है, पानी से तुमने गुजर जाना है, लेकिन लकड़ी से नहीं गुजरोगे, प्लास्टिक से नहीं गुजरोगे। तो क्या वो रब जहन्नुम को ये हुक्म नहीं दे सकता कि तुमने ईमान वालों को नहीं छूना? यहाँ से लोग फिर अपने अमाल से गुजरेंगे। इंशाल्लाह सूरह हदीद पे इस पे बहुत तफसील से बात हो सकती है कि अंधेरों में और कैसे लोग गुजरेंगे और वहाँ भटक रहे होंगे, लोगों के पास जो रोशनी होगी उसी की रोशनी में जाएंगे और मुनाफिकों का नूर वहाँ जाके खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में भी टुमटमाते थे वहाँ भी रहेंगे, लेकिन हर बंदा वहाँ से गुजरेगा और यहाँ से लोग गिर गिर के जहन्नुम में गिरेंगे। जहन्नमियों को तो गिरना ही है, वो तो गिरेंगे। कुछ लोग ईमान वाले होने के बावजूद भी कट कट के गिरेंगे। फिर वो जहन्नुम में जब अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे फिर आगे जाएंगे। इस पे भी एक लेक्चर है, है, बहुत दफ़ा उस पर भी बात अल्हम्दुलिल्लाह हुई। टॉपिक गालिबन गुनाहों के बारे में है, कुछ पूरे स्टेप्स हमने नोट किए थे उसमें, आज से लेके मौत तक कि जो हम गुनाह करते हैं ना, इन गुनाहों को अल्लाह ताला कहाँ कहाँ माफ़ करेगा। अब अभी ये समझ ले कि पुल सरात उसका आखिरी रूम है, और पुल सरात मुझे ऐसे लगता है जैसे डिसेक्शन रूम है। वहाँ से अल्लाह जिस्म के गंदे खून को नहीं छोड़ेगा, हराम से पला हुआ गोश्त वहाँ जाके कटेगा, वहाँ जाके इंसान की पस निकलेगी, क्योंकि अल्लाह किसी गंदे जिस्म को जन्नत में नहीं डालेगा। ये अल्लाह का वादा है। जो दुनिया में अब तौबा करके अपने गुनाहों की पस नहीं निकालेंगे ना, फिर उनकी पस वहाँ निकलेगी, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। कुल मन का नफिदला लती, कह दीजिए जो गुमराही में होता, अल्लाह रहमान इसको खूब लंबी मोहलत देता है, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख लें जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अजाब या कियामत को। इस वक्त इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कौन बुरे मर्तबे वाला और किसका जत्था कमजोर है, और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बढ़ाता है, और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और इंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर हैं। अल्लाह हमें उसी की तौफीक दे दे। क्या तूने उसे भी देखा जिसने हमारी आयतों से कुफर किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद जरूर ही दी जाएगी, क्या वो गैब पर मुत्तले है या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज़ नहीं, जो भी कह रहा है इसे हम जरूर लिख लेंगे और इसके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे, ये जिन चीजों को कह रहा है इसे हम इसके बाद ले लेंगे, और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने खड़ा होगा। उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए, वो इनके लिए बायस इज्जत हों, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे। ये थी आयत नंबर 75 से 82, 75 से 82। इसका उन्वान लिखिएगा, हिदायत वालों की हिदायत बढ़ती है, गुमराहों की गुमराही। बहुत ज़बरदस्त कानून अल्लाह ने अपना इसमें बयान किया कि जो एक दफ़ा गलत रास्ते पे चल पड़ता है ना, तो हम उसके उसी रास्ते पे चलने को आसान कर देते हैं। अब देखिए कि पहली दफ़ा कोई गुनाह किया जाए तो मुश्किल लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान लगने लगता है। यही हिदायत के साथ है, शुरू में जो नेकी मुश्किल लगती है ना, वो आसान होती है। आप पहले दिन अल्लाह के कलाम की मजलिस में आते हैं ना, तो आप बहुत थकते हैं, आपको नींद भी आती है, आप थक जाते हैं। अगले दिन आप अगर दिल पे जबर करके बैठ जाते हैं, तीसरे चौथे दिन फिर आपका दिल खुलने लगता है। यही वो चीज़ है, जैसे खाना खाते हैं ना, शुरू में थोड़ा खाना खा के पेट भर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी डोज बढ़ाते जाएं, आपका खाना जो है आपको अच्छा लगने लगता है। हिदायत के साथ भी यही मामला है, जो जितना हिदायत के साथ अपने आप को जोड़ के रखेगा, अल्लाह ताला उतनी ही हिदायत की एब्जॉर्प्शन उसके दिल में मजीद ज्यादा से ज्यादा कर देगा। अलम तरन अरसलना शयातीन अलल काफिरीन, क्या तूने देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं जो इन्हें खूब उकसाते हैं? तू इनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद ही इनकी मुद्दत शुमार कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौरे मेहमान के जमा करेंगे, यौमा नख्शुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम वर्दा, और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हांक ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। पहला तो हमें अपने वफ़द में रखना, किसी को शिफात का इख्तियार ना होगा सिवाय इनके जिन्होंने अल्लाह की तरफ से कोई कौल इकरार ले लिया। इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है, यकीनन तुम बहुत बड़ी और भारी चीज लाए हो, करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजे रेजे हो जाए कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे। शाने रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे, आसमानों जमीन में जो भी हैं सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। इन सबको इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है, ये सारे के सारे कियामत के दिन अकेले इसके पास हाजिर होने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलुलहुमुर्रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने शाइस्ता अमल किए, इनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। ये थी आयत नंबर 83 से 96, 83 से 96। इसका उन्वान लिखिए, जिनके लिए अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देगा। सही बुखारी की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि जब अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे को नेकी करता देखता है ना, तो उसको अपना महबूब बना लेता है, फिर जिब्राइल को बुलाता है और कहता है मैं फ़ुलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर आसमान के फरिश्तों में पुकार लगाते हैं कि फरिश्तों फ़ुलां से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। फिर आसमानों वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर आसमान के फरिश्ते जमीन के फरिश्तों के अंदर दिलों में ये बात इल्का करते हैं और फरमाए इस तरह उस बंदे के लिए दुनिया में मोहब्बत फैला दी जाती है। इंसान की कमजोरियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो मोहब्बत चाहता है। हम जो अप्रिसिएशन चाह रहे होते हैं ना, असल में वो भी मोहब्बत ही चाह रहे होते हैं। बीवी चाहती है शौहर मोहब्बत करे, बच्चा चाहता है माँ बाप मोहब्बत करे, दोस्त हमसे मोहब्बत करें, लेकिन सच्ची मोहब्बत कब मिलती है? जब किसी बंदे के लिए अल्लाह मोहब्बत डाले। और आज देख लीजिए बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, क्यों उनका नाम लेके हमारे दिल मोहब्बत से भर जाते हैं? ये अल्लाह की डाली हुई मोहब्बतें हैं। जो सच्ची मोहब्बतें पाना चाहता है ना, एक दफ़ा अल्लाह की तरफ पूरे खलूस के साथ आए। आप लोगों को कहते हैं ना दुआएं करें हमारे लिए, आप अल्लाह की तरफ आते हैं ना तो आपके लिए लोग ऐसी दुआएं करते हैं कि जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप किसी को नफा देते हैं ना, लोग खुद ही दुआ करते हैं। जिसके दिल से दुआ निकलती है वही कबूल होती है। कोई कहता है हम तहज्जुद में दुआ करते हैं, कोई कहता है हम करवटों में दुआ करते हैं, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दफा अपने दिल के साथ आप अपने रब की तरफ आके देखें, यकीन करें आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप अपने लिए दुआ करें। आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ऐसे लोगों के लिए तो फरिश्ते भी दुआएं करते हैं। इंशाल्लाह अगली सूरतों में आने वाली है वो बात। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ अपने रास्ते में लगा दे। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत ही आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या इनमें से एक की भी आहट तू पाता है? ये इनकी आवाज की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है। ये है आयत नंबर 97 और 98, 97 से 98। इसका अनवान है अल्लाह की किताब आसान है। ये अलग बात है कि हम जैसे लोग मुश्किल करते हैं, किताब बड़ी आसान है। और लोगों का हक बनता है कि लोगों को आसान से आसान तरीके से किताब सिखाई जाए, लेकिन जब कोई बंदा इस किताब को बयान करने के लिए बैठता है ना, तो शैतान एक ज़रूर उसके दिल में ख्याल डालता है कि बड़ी बड़ी बातें करना, ज़रा खूब मुश्किल लफ्ज़ बोलना और ज़रा ऐसी बातें करना कि लोगों को लगे वो कितना इल्म है। और वो कभी इंसानी लेवल पे आके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आसान बातें मिसालें पेश करने की बंदे को तौफीक ही नहीं देता कि कहीं लोग ये ना सोच लें कि ये किताब तो हमारी ज़िंदगी की किताब है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि सूरत मरियम को पढ़ने के बाद हमारे किरदार को हज़रत मरियम की तरह बेदाग कर दे, हमें ईमान के वो दर्जे अता फरमाए कि हम अल्लाह के रास्ते में खड़े हो सकें।